रात की 10 बजे के करीब शिमला के जंगल, जिन्हें आज भी लोग शापित मानते थे और वहां जाने के नाम से भी डरते थे, वहां चार दोस्त पिया, पलक, अंश और मयंक ट्रेकिंग के लिए आए हुए थे। उनकी उम्र लगभग 20 से 23 साल के बीच थी। रात हो जाने के कारण वो जंगल के अंदर नहीं गए और वहीं पास में टेंट लगाकर बोनफायर के आगे गेम्स खेल रहे थे। मयंक ने एक खाली बोतल घुमाते हुए कहा, कम ऑन गाइज, जल्दी सेलेक्ट करो, ट्रुथ या डेयर। बोतल का किनारा घूमकर पलक की तरफ आया, जिसे देखकर बाकी तीनों जोर से चिल्लाए। पलक ने अपने बाल झटकते हुए कहा, डेयर, मैं नहीं डरती किसी से, जल्दी बताओ क्या करना है। पलक का उत्साह देख बाकी तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अंश जल्दी से बोल पड़ा, मैं दूंगा तुम्हें डेयर। पिया ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, कम ऑन अंश, कुछ खतरनाक सा करवाना कि मैडम के सिर से डेयर का सारा भूत उतर जाए। उसकी बात सुनकर पलक ने मुंह बनाया। वो उसकी बात का कुछ जवाब दे पाती उससे पहले अंश ने हंसते हुए कहा, ओके मिस डेयरिंग पलक, ट्रैकिंग के लिए आए हैं ना, तो जंगल के अंदर जाकर वहां का एक राउंड लगा कर आओ। पलक उसकी बात सुनकर आंखें बड़ी करके बोली, पर ये जंगल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं इतनी रात को पूरे जंगल में कैसे घूम कर आऊंगी। पलक ने उसकी बात मनाने से इनकार कर दिया। अंश ने उसे वो डेयर करने से मना कर दिया, लेकिन पिया अभी भी जिद पर अड़ी रही। पलक, अपना मोबाइल ले जा और ज्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर तक जंगल के अंदर जाकर आ जाना, इतना काफी होगा, लेकिन तुम्हें भी अपना डेयर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अंश ने कहा, हाँ, अगर आज तो नहीं गई तो नाम अब से डेयरिंग पलक से फट्टू पलक हो जाएगा। मयंक ने उनकी तरफ आंख दिखाकर कहा, नहीं, पलक कहीं नहीं जाएगी, पता है ना लोग क्या बोल रहे थे इस जंगल के बारे में, ये जंगल शापित है। अंश, तुम भी क्या लोगों की बातों में विश्वास करने लगे, कुछ नहीं है इस जंगल के अंदर, गो पलक, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बता दो। पलक के पास अब हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पलक ने अपना एटीट्यूड दिखाकर बोला, पलक मेहता किसी से नहीं डरती, मैं जंगल के अंदर 1 नहीं बल्कि पूरे 2 किलोमीटर आगे तक जाऊंगी। मयंक अभी भी उनकी इस बेवकूफी में साथ नहीं देना चाहता था, वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। प्लीज पलक, जिद मत करो, हम लोग दिन में चले जाएंगे इस जंगल में, वैसे भी कल तो अंदर जाना ही है, तुम अपना डेयर कल पूरा कर लेना, बेवकूफी में आकर कुछ ऐसा काम मत कर देना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। पिया ने आंखें तरेर कर बोला, पलक, ये मयंक तो है ही फट्टू, तो इसकी बातों पर ध्यान मत दे, तो एक काम कर, अपने साथ में ये बैग ले ले, इसमें खाने पीने का सामान है, और ये ले टॉर्च, जंगल में बहुत अंधेरा होगा, और हाँ, स्टेप ट्रैकर ऑन कर लेना ताकि पता चल सके कि तुम जंगल में कितने कदम चलकर आई हो। मयंक के लाख समझाने के बावजूद अंश और पिया की जिद पर पलक जंगल के अंदर गई। वो घबराते हुए जंगल में आगे बढ़ रही थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो कानों में ईयरपीस लगाकर म्यूजिक सुनते हुए आगे बढ़ रही थी। पलक हाथ में टॉर्च लिए जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। वहां के पेड़ इतने घने थे कि कोई भी उन्हें देखकर डर जाए। पलक ने खुद के डर पर काबू करके बोला, अंदर तक आ तो गई हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना अंधेरा है, यहाँ तो कोई भी डर जाए। हे बजरंगबली, रक्षा कीजिएगा, पता नहीं यहाँ पर इतनी शांति क्यों है। एक काम करती हूँ, इधर उधर वॉक कर लेती हूँ और जाकर बोल दूंगी कि 2 किलोमीटर जाकर आई हूँ। पलक इधर उधर घूम रही थी कि उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। वो चीज हवा से भी तेजी से उसके कानों के ठीक पास से गुजरी थी। पलक ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। पिया, अंश, मयंक, तुम लोग हो ना मुझे परेशान करने के लिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे आए हो, देखो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। पलक को चिल्लाने के बावजूद भी कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो हवा का झोंका एक बार फिर उसी तेजी से उसके पास से गुजरा। पलक घबराते हुए वहां से उल्टे पैर भागने लगी, बचाओ कोई मुझे। पलक बेतहाशा इधर से उधर भाग रही थी। अंधेरा होने की वजह से उसे समझ नहीं आया कि वो किस दिशा में आगे जाए और वो जंगल की भूल भुलैया में खो गई थी। भागते भागते उसके हाथ से टॉर्च और बैग गिर गई। तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई। पलक डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि वो किसी की गोद में है। पलक ने धीरे से एक आंख खोलकर बोला, कौन हो तुम। सामने से कोई जवाब नहीं आया। पलक ने हिम्मत करके अपनी दोनों आंखें खोली। जवाब दो, कौन हो तुम, इस जंगल में कर क्या रहे हो। उसे वहां देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई। वो उसे दूर होते हुए बोली, तुम डरा रहे थे ना मुझे। पलक ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन करके उस लड़की की तरफ देखा। उसने देखा कि सामने एक 24-25 साल का लंबा लड़का खड़ा था। उस लड़के के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, जो कि उसके गोरे चेहरे पर काफी जच रही थी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें देखकर पलक बस एकटक उसे ही निहार रही थी। उसे देखकर पलक ने बुदबुदाते हुए कहा, मयंक बेवजह ही घबरा रहा था, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे जंगल में राक्षस हो, पर किसे पता था यहाँ पर तो एक राजकुमार मिल जाएगा। उस लड़के ने थोड़ी रौबदार आवाज में कहा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं। पलक ने खोई हुई आवाज में कहा, तुम तो किसी सियासत के राजकुमार लगते हो,
वो नहीं होते क्या जो लड़कियों के सपनों में आता है, ख्वाबों का शहजादा जो कि सफेद घोड़े के ऊपर बैठकर आता है और अपनी शहजादी को ले जाता है? उसने उसी रॉब से जवाब दिया, हम राजकुमार ही हैं, राजकुमार रिवांश। पलक उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। वो आगे बोली, अच्छा कौन सी रियासत के राजकुमार हो आप? रिवांश ने जवाब दिया, यहीं से थोड़ी दूर है, बिलासपुर। पलक, वैसे तुम तो देखने में तो किसी राजकुमार जैसे लगते हो, लेकिन मजाक काफी अच्छा कर लेते हो। इस जमाने में कहाँ रियासतें हैं, वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? रिवांश ने खोए हुए स्वर में कहा। ये कौन सा साल चल रहा है? पलक को अभी भी सब मजाक लग रहा था। उसने अपनी हंसी दबाकर बोला, 1950 चल रहा है। इतना वक्त हो गया? अगर 1950 चल रहा है तो, रिवांश ने अपनी उंगलियों पर गिनकर कहा, तब तो हम 125 साल के हैं। उसकी बात सुनकर पलक अब अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम ना बहुत मजाक करते हो, कोई और सुने तो सच में डर ही जाए। बोलते हुए पलक पीछे मुड़ी तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक पल के लिए वो बहुत घबरा गई कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। पलक ने मुड़कर देखा तो रिवांश उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। पलक के दिल की धड़कनें बेकाबू होकर पड़ने लगी। पलक ने मदहोश होकर कहा, अरे हम अभी ही तो मिले हैं और इतनी जल्दी? प्यार तो मुझे भी तुम्हें देखते ही हो गया था। लेकिन, बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं और वो उस लम्हे को महसूस करने लगी। उसकी आंखें बंद थीं। अचानक से रिवांश के आगे के दो दांत बाहर निकल आए। जिस चेहरे की मासूमियत देखकर पलक उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, उस पर एक शैतान की बुराई झलक रही थी। उसकी हरी आंखों में खून उतर आया। रिवांश ने भारी स्वर में कहा, हमें माफ कीजिएगा। रिवांश की आवाज सुनकर पलक पूरी तरह घबरा गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले रिवांश का मुंह उसकी गर्दन के दाहिने तरफ था। वो उसकी गर्दन पर अपना मुंह लगाकर उसका खून पी रहा था। पलक के अंदर खून की एक भी बूंद नहीं बची और वो निढाल होकर गिर पड़ी। रिवांश के होठों पर पलक का खून लगा था। खून पीते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। रिवांश ने पलक को उठाया और वहीं से उठाकर जंगल के बाहर फेंक दिया।
उधर आकांक्षा और जानवी को घर आते आते रात के 11 बज गए। जानवी के मॉम डैड किसी वजह से आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे। आकांक्षा ने घर आते ही अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें राजवीर जी के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। आकांक्षा ने गुस्से में जानवी की तरफ देखा। जानवी की बच्ची? जानवी ने मासूम चेहरा बनाया और कहा, क्या यार, बच्ची तो तब होगी ना जब तू हाथ पकड़कर अपने होने वाले जीजू के बारे में कुछ बताएगी। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी आकांक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तू भी ना, दद्दू को पता तो नहीं चल गया होगा ना? जानवी ने हंसते हुए कहा। बोल देना फोन साइलेंट था, नींद आ गई थी, या कुछ भी बोल देना ना यार। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। घर पर कोई ना होने की वजह से वो दोनों घबरा गए। ऊपर से मोहनदास जी की कही हुई बातों का ख्याल आते ही जानवी चिल्ला कर बोली, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, कहीं कोई पिशाच हुआ तो? आकांक्षा ने घबराते हुए कहा, तो मैं क्यों खोलूं, पिशाच मुझे खा गया तो? जानवी, तुझे नहीं खाएगा, मैंने बोल दिया ना कि मैं डोर नहीं खोलूंगी, वैसे इतनी रात को कौन होगा? जानवी की बात सुनकर आकांक्षा सोच में पड़ गई। वो लोग जिस इलाके में रहते थे वहां पर सबके घर काफी दूरी पर बने हुए थे, तो इतनी रात को किसी का आना लगभग नामुमकिन सा था। तुझे हनुमान चालीसा आता है जानवी? जानवी ने हाँ में सिर हिलाया। आकांक्षा, चल तो फिर दोनों मिलकर कोरस में गाते हैं, पर दरवाजा तो खोलने जाना ही पड़ेगा। जय हनुमान, वो दोनों एक साथ बोली कि तभी बाहर से राजवीर जी के चिल्लाने की आवाज आई, अक्षु, जानवी, दरवाजा खोलो, बच्चियों तुम दोनों ठीक तो हो ना? उनकी आवाज सुनकर जानवी ने राहत की सांस ली। ओह गॉड, दद्दू ने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे तो लगा कहीं कोई पिशाच तो नहीं आ गया। आकांक्षा ने उसे आंखें दिखाकर कहा, ए लड़की, मेरे दद्दू को पिशाच मत बोल तू। जानवी, तो आधी रात को कौन आता है ऐसे? आकांक्षा उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने कहा था ना, अगर मैंने कॉल पिक नहीं किया तो दद्दू डर जाएंगे। डर जाएंगे या हमें डरा देंगे? जानवी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उन दोनों को सही सलामत देखकर राजवीर जी ने भी चैन की सांस ली। राजवीर जी उनके साथ अंदर आते हुए बात कर रहे थे। कहाँ थी तुम दोनों? मैं कब से फोन कर रहा था, ना तो कॉल उठा रही थी और ना ही दरवाजा खोल रही थी। जानवी, अगर तुम अकेली थी तो हमारे घर पर आ जाती, डरा दिया तुम दोनों ने मुझे। आकांक्षा ने वापस दरवाजा बंद करते हुए कहा, अरे दद्दू, अब हम दोनों कोई बच्चियां थोड़ी ना है, आप चलिए अंदर, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो रात को यहीं पर रुक जाइए। जानवी, हाँ दद्दू, आप वापस मत जाइएगा, क्या पता कोई पिशाच आपको उठाकर ले गया तो? उसकी बात सुनकर राजवीर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षु सच ही कहती है कि उसकी फ्रेंड जानवी थोड़ी पागल सी है। उनकी बात सुनकर जानवी ने आकांक्षा को गुस्से से देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपना एक कान पकड़ लिया। सॉरी। राजवीर जी जानवी और आकांक्षा के साथ ही जानवी के घर पर रुक गए। तारो तारो। दूसरी तरफ जंगल के बाहर मयंक, अंश और पिया पलक का इंतजार कर रहे थे। रात के 2:30 बज चुके थे लेकिन पलक अभी तक वापस नहीं आई थी। उसके वापस ना आने से वो परेशान हो गए। उन्होंने उसे कॉल भी किया लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था।
मयंक ने उन दोनों की तरफ गुस्से में देखा और कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जंगल शापित है। मना किया था मैंने पलक को अंदर जाने से, लेकिन तुम लोगों की एक बेवकूफी की वजह से आज पलक की जान खतरे में हो सकती है। पिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने नम आंखों से कहा, अब तो मुझे भी पलक के लिए डर लग रहा है। उसे गए हुए लगभग 4 घंटे हो रहे हैं और वो अभी तक वापस नहीं आई है। अंश, अगर मुझे पता होता तो मैं पलक को कभी भी नहीं जाने देता। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो तीनों पलक के लिए बहुत घबरा गए। क्यों ना हम पलक को जंगल के अंदर जाकर देखें, पिया ने सुझाव दिया। उसकी बात सुनकर अंश थोड़ा नाराज हो गया। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या पता ये जंगल सच में शापित है? चलो किसी पास के पुलिस स्टेशन में चलते हैं। मयंक, पहले जंगल के आसपास उसे ढूंढते हैं, लेकिन जंगल के अंदर तक नहीं जाएंगे। हो सकता है कि पलक हमें यहीं कहीं मिल जाए। हम उसे अलग अलग जाकर ढूंढते हैं, अंश ने कहा। तो पिया ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जहां जाएंगे साथ रहेंगे। मयंक, पिया बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो चारों पलक को इधर उधर ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक पिया का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही पिया का नजर सामने पड़ी चीज पर गई। उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखा और चिल्लाकर बोली, पलक पलक पलक, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आ गई? पिया के कहते ही अंश और मयंक ने अपने अपने टॉर्च की रोशनी पलक की तरफ कर दी। उसे देखकर मयंक को थोड़ा संदेह हुआ और उसने अपनी उंगली उसके नाक के सामने रखकर उसकी सांसों को चेक किया। उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने पिया की तरफ देखा जो कि उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। पिया, जल्दी से पलक से दूर हो जाओ, क्योंकि ये पलक नहीं, उसकी लाश है। उसके कहते ही पिया चिल्लाते हुए उससे दूर हो गई। शुक्रिया, आपकी समीक्षा और रेटिंग हमारा हौसला बढ़ाती है, तो समीक्षा और रेटिंग जरूर दीजिएगा। थैंक यू।